आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनम फ्रॉम बिहार और मैं अपनी बैचलर्स डिग्री सोशियोलॉजी में पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ। आज जो है हम लोग आपकी क्लास 12th का फ्लेमिंगो की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बुक को हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हर चैप्टर के साथ हम लोग एक पोएम भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लास्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस लेसन के एंड में हम लोग एक और पोएम भी करेंगे, जैसे कि माय मदर एट 66। और यही करते करते हम लोग अपनी पोएम्स खत्म कर लेंगे। लास्ट के जो दो चैप्टर हैं, यानी चैप्टर नंबर 7 और 8, वो हम लोग इंडिविजुअली ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, जो कि है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट। सबसे पहले मैं आपको अल्फोंसो डॉडेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वो एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। वो ओरिजिनली जो है वो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें जर्नलिज्म करना था और वो एक जर्नलिस्ट बने पेरिस में जा करके। और उसके बाद उन्होंने जो है वो राइटिंग को संभाला और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। उसी में से एक आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। I started for school very late that morning and was in great dread for a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, where there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub, you'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. So yahan pe jo narrator hai wo hame bata rahe hain ki ek din jo hai wo school ke liye kafi late uthe aur wo jo hai late pe late hote ja rahe the, aur aaj unhe स्पेशली ज्यादा डर इस वजह से लग रहा था क्योंकि आज उनके जो फ्रेंच प्रोफेसर हैं, यानी एम हैमिल, उन्होंने कहा था कि आज जो है वो पार्टिसिपेंट्स पे वो एक टेस्ट रखेंगे। सो एक पल के लिए उनके दिमाग में ये बात आई कि आज जो है वो उन्हें स्कूल बंक कर देना चाहिए और उन्हें जो है अपना वक्त आउटडोर्स जो है गुजारना चाहिए, जहाँ पे उन्हें जो है वो चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें सुनने मिलेंगी, जंगलों में वो जा सकते हैं, वहां पे जो सोल्जर्स काम कर रहे थे उन्हें देख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पार्टिसिपल्स के लेसन को लर्न करने से। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारे थॉट्स को जो है वो असाइड रखे और वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए भागने लगे। अब जब वो अपने स्कूल की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि फिर से हमेशा की तरह बहुत सारी भीड़ जो है वो बुलेटिन बोर्ड के पास जमा थी और वो हमेशा से जो है वो इस वजह से फेमस रहे कि कोई भी न्यूज जो आती है वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आकर के लग जाती है और पिछले दिनों जो भी न्यूज आई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है और वो बस इसी बारे में आई है कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो अपनी जंग हारी है, क्या कमांडिंग ऑफिसर के तरफ से ऑर्डर्स आए हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि क्या इस बार क्या बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने जरा से भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, वहां पे रुके नहीं और डायरेक्ट जो है वो अपने स्कूल की तरफ भागते गए। और वहां पे रास्ते में जो उन्हें ब्लैकस्मिथ मिलता है, यानी लोहार वगैरह मिलते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम अपने टाइम पे पहुंच जाओगे, इतना ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। तब उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं लेट हो चुका हूँ। एनीवे, वो दौड़ते भागते पहुंचते हैं एम हैमिल के लिटिल गार्डन में, यानी उनका जहाँ पे क्लासेस चलते थे वहां पे उनके जो प्रोफेसर थे, उनके जो टीचर थे, उन्होंने अपना एक लिटिल गार्डन बना रखा था आगे में ही। और वो फाइनली लेट पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वो पहुंच जाते हैं और वो बिल्कुल उनकी सांसें चढ़ी होती क्योंकि वो पूरे रास्ते दौड़ भाग करके ही आए थे। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the streets, the opening and closing of desks, lessons repeating in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day, everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the windows, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his blue-green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Beside, the whole school seemed to be so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with three-cornered hat, and former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब फ्रांस जो है वो पहुंच तो जाता है स्कूल, लेकिन वो कुछ अनयूजुअल सा फील करता है, क्योंकि डेली की जो रूटीन थी वो बहुत ज्यादा हमेशा शोरगुल होता रहता था, इतना हल्ला हो रहा था, बच्चे इतना हल्ला कर रहे होते थे, जो चेयर और डेस्क है वो मूव करने की आवाज आ रही होती थी कि वो तो गली के पास से भी सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन आज बिल्कुल ऐसी शांति थी जैसे कि संडे हो और स्कूल बंद हो, कहीं से कोई आवाज नहीं। लेकिन फिर भी फ्रांस ने हिम्मत करके अंदर गया, वो आगे बढ़ा और उसने सोचा कि जो है वो इस शोरगुल में अपने आप को छुपा लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो लेट आया। लेकिन वहां तो बहुत अजीब सी शांति थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो तो नहीं गया है। तब वो इस चीज को अवॉइड कर ही नहीं पाया और बल्कि उसे खुद से दरवाजा खोलना पड़ा और परमिशन लेकर के अंदर आना पड़ा। और जब उसने देखा तो एम हैमल जो है वो अपने हाथ में आयरन वाला रूलर जो है स्केल वो उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो उसे लगा कि कहीं उसे मार तो नहीं पड़ने वाली है। लेकिन उसे ये चीज जानकर के बहुत ही अजीब लगा कि एम हैमल ने कुछ बोला ही नहीं, उसके टीचर ने कुछ बोला ही नहीं उसे। इनफैक्ट बहुत ही प्यार से उसे कहा कि अरे फ्रांस जल्दी से अंदर आओ, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही आज का क्लास शुरू करने वाले थे। तभी वो जल्दी से आता है और अपने सीट पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा उसकी जो घबराहट थी वो थोड़ी कम हुई, तभी उसने नोटिस करा कि जो उसके टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने जो है वो ग्रीन कोट पहना हुआ था और वही फ्रिल्ड वाली शर्ट, और उन्होंने अपनी ब्लैक टोपी भी लगा रखी थी। और उन्हें ये बात याद आई कि ऐसा ड्रेस जो है वो एम हैमिल तभी पहनते हैं, वो कैप वो तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल दिन होता है। और तभी फ्रांस को लगा कि आज भी कोई ऐसे खास दिन है जो उन्होंने इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है। एक और चीज जो इससे भी ज्यादा अजीब थी वो थी कि क्लास के जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे, पीछे की सीट पूरी खाली रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। और आज बहुत ही बूढ़े लोग बैठे हुए, और उनमें से कौन था, जैसे कि ओल्ड हॉजर जो फॉर्मर मेयर थे, पुराने मेयर जो थे वहां के वो बैठे हुए थे, जो पोस्ट मास्टर था पुराना वो बैठा हुआ था, और जो हॉजर था उसने अपना पुरानी जो नोटबुक होती है वो खोल करके, जो काफी फटी हुई थी पुरानी हो चुकी थी, उसने वो खोल करके अपने घुटनों पे रखा हुआ था। तब उसे ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी कि आज ऐसा खास क्या है कि इतनी शांति भी है, हैमिल ने जो है वो इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, जो पीछे के बेंचेस हैं वो बूढ़े लोगों से फिल हुए हुए हैं, तो आखिर माजरा क्या है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there, then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding to the Saar. My books that had seemed much a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about all his ruler and how cranky he was. Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect to the country that was theirs no more. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on my first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Hamel say to me, "I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is? Every day we have said to ourselves, 'Bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow.' And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, 'How is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language?' But you're not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Jaise hi ki wo kisi aur se kuch pooch paata, kuch keh paata, usse pehle hi M. Hamel ne khud hi bata diya. Aur unhone kya kaha? Unhone bahut hi gentle tone mein kaha ki mere bachon, aaj jo hai main tumhe aap logo ka, tum logo ka last lesson padhane ja raha. Aur orders aa chuke hain Berlin se ki ab schools mein jo hai wo sirf German padhaya jayega. तो इस वजह से अल्सास एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा. मेरा आज आखिरी दिन है और कल से जो है तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे जो कि जर्मन पढ़ाएंगे. और इस वजह से क्योंकि ये लास्ट लेसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अटेंटिव रहो, काफी ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ. और तभी जो है फ्रांस को सबसे बड़ा झटका लगता है कि आज तक वो जिस सब्जेक्ट से, जिस टीचर से हमेशा भागता आया है, उसे जो है फ्रेंच पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो चिड़ियों के अंडे देखने पसंद थे और जो है उसे क्लास बंक करना पसंद था. लेकिन अब फ्रांस हर कुछ जो है वो रिग्रेट कर रहा था. तब उसको ये सारी बातें समझ आई कि अपने लास्ट डे के ऑनर में उसके जो टीचर थे उन्होंने जो है वो अपने संडे के बेस्ट क्लोथ्स जो है वो पुट ऑन किए हुए थे. और तब उन्हें ये बात समझ आई कि वो जो बूढ़े लोग जो कि 40+ लोग हैं, वो जो पीछे बेंचेस पे बैठे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं उसी बात के लिए सॉरी थे कि वो अपना लेसन जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए और इस वजह से वो अपने टीचर को एक लास्ट थैंक यू बोलने आए हैं. और जब वो ये सब सोच रहा था तभी जो है एम हैमिल उसका नाम बुलाते हैं. और अगेन आज तो पार्टिसिपल पे टेस्ट था तो वो जो है वो पूछते हैं कि चलो बताओ जो भी मैंने टेस्ट के लिए बोला था. अब फ्रांस जो है वो कह रहा है कि कुछ भी, वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी देने को तैयार था, बस उसको लास्ट टाइम पे ये चाहिए था कि वो बिना रुके बिल्कुल फर्राटे से वो पार्टिसिपेंट्स का लेसन जो है वो सुना दे. लेकिन वो फर्स्ट वर्ड्स में ही अटक जाता है और वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है कि वो अपना सर बिल्कुल नीचे झुका करके खड़ा रहता है. तभी उसके टीचर बोलते हैं कि घबराओ मत फ्रांस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं क्योंकि डांटने से कुछ अब फर्क पड़ने वाला ही नहीं है. तुम्हें लगा होगा कि बहुत टाइम है, हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हर चीज़ के लिए बहुत टाइम है, हम लोग कल कर लेंगे, कल नहीं तो एक महीने बाद कर लेंगे। लेकिन देख लो अब किस तरह से जो है वो हर कुछ चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी और इससे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है कि जब तुम्हें फ्यूचर में ये बात सुननी पड़े कि तुम तो बड़े फ्रेंच बंदे थे और तुम्हें फ्रेंच लिखना और पढ़ना भी नहीं आता है। तो वो इस गिल्ट के साथ जो है वो फ्रांस को वहीं पे छोड़ देते हैं और ये भी बताते हैं कि सिर्फ तुम ही गलत नहीं हो या तुमसे ही गलती नहीं हुई है, हम सब लोगों ने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, जो उनको अटेंशन चाहिए था वो नहीं दिया और देखो आज हम लोग एक ऐसी जगह पे आकर के खड़े हो गए हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons. And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget about it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he had said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it in our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof of the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Ab M. Hamel कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं बल्कि हम सभी कहीं ना कहीं गलत हैं। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए कि तुम अच्छे तरह से इस लैंग्वेज को सीख सको, पढ़ सको, बल्कि ये बेटर समझा कि तुम कहीं जाकर के खेत में काम कर लो या मिल्स पे काम कर लो बस थोड़े से कुछ पैसों के लिए। और मैं भी तो ब्लेम करने लायक हूँ क्योंकि मैं भी तो तुम्हें कितनी बार जो है वो अपने गार्डन में पौधों को पानी देने भेज देता था, या फिर जब मुझे फिशिंग करने का दिल करता था तो मैं तुम सबको छुट्टी दे दिया करता था। और हम सभी ने कहीं ना कहीं बहुत नेग्लिजेंसी दिखाई है। और फिर जो है फ्रांस को एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर सुनने को मिलता है महामिल द्वारा, जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं और वो कितना उसको पसंद करते हैं और उसकी कितनी तारीफ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसे सुनने को मिलती हैं। अब जो नेक्स्ट लेसन था उनका ग्रामर में, वो जो है एम हैमिल ने पढ़ाना शुरू किया। और इस बार फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि आज से पहले उसने इतनी अच्छे से किसी भी लेसन में ना ध्यान दिया है और शायद आज से पहले इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके खुद के टीचर ने भी उसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि आज उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा था, सब कुछ बहुत ही इजी उसे लग रहा था। फिर जो है जो उसकी टीचर होते हैं हैमिल, वो जब राइटिंग का पीरियड, नेक्स्ट पीरियड उनका राइटिंग होता है, तब सबको नई नोटबुक्स देते हैं और उन नोटबुक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अलसास, फ्रांस अलसास। और ये बिल्कुल जो है लग रहा था जैसे कि हर जगह उसको फ्रांस का एक झंडा दिख रहा था, मतलब एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, है ना, देशभक्ति वाली फीलिंग सभी के अंदर जाग चुकी थी और हर जगह ऐसा लग रहा था कि उनकी कंट्री का जो है झंडा जो है वो हर जगह फैला हुआ है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिटेड महसूस कर रहे थे। हर कुछ बहुत ही शांत था, बस सिर्फ पेन के लिखने की आवाज़ आ रही थी, है ना, जो पेन जो है वो पेपर पे रगड़ा रहा था बस उसकी आवाज़ आ रही थी। हर कोई बहुत ही दिल लगा करके अपना काम कर रहा था। और यहाँ पे तो इवन द लिटलेस्ट वन, ये एक्चुअली पिजन को रेफर किया जा रहा है जो कि वहां पे बैठे हुए थे, जो छज्जा होता है क्लासरूम का वहां पे बैठे हुए थे और ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो भी एक स्टूडेंट है और वो लोग भी जो है आज फ्रेंच का लेसन बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाह रहे हैं। और तभी फ्रांस के दिमाग में एक सवाल आता है जब वो कबूतरों को देखता है, तो वो सोचता है कि क्या ये जो जर्मन्स हैं वो कबूतरों को भी लैंग्वेज चेंज करने बोलेंगे, क्या उन्हें भी जो है वो जर्मन में बोलेंगे कि तुम अब जर्मन में आवाज निकालो या कू कू करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये दिखाता है कि जो लैंग्वेज है वो इंसान की कितनी अपनी होती है ना, जो आपकी मदर टंग होती है। जैसे कि एन हैमल ने पहले भी कहा कि अगर हम लोग अपनी मदर टंग के सहारे जिंदा रहेंगे और रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा जैसे बिल्कुल जो स्लेवरी की जो चाबी है, अगर आप एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हो और उस पिंजरे की चाबी आपके पास रहेगी हमेशा अगर आप अपनी मदर टंग को अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि कोई भी नया लेसन, नई लैंग्वेज, नया कुछ भी आपको याद कराया जा सकता है, लेकिन आपको जो ऑलरेडी पता है, जो याद है, वो आपसे भूलने के लिए नहीं कहा जा सकता है ना। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy, for 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Babe Bi Bobu. Down there at the back of the room, old Hauser had put up his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. All at once the church clock struck 12. Then the angels. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he. But something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Viva la France! Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. So France, जो है वो जब भी अपनी notebook के बाहर देखता था, तो वो देखता था कि M. Hamel, यानी उसकी teacher जो हैं, वो बिल्कुल ना हिले डुले, बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं। और कभी इस दीवार को देखते हैं, कभी उस दीवार को देखते हैं, कभी एक बेंच को देखते हैं, कभी अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं। मानो कि वो ऐसा चाह रहे हों कि उनके दिमाग में वो जो सीन है, वो मंजर है, वो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिमाग में छप जाए और वो उन्हें कभी ना भूले। आखिर उन्होंने उसी क्लास में अपने 40 साल बिताए थे और बिल्कुल उन्हीं की तरह जो वहाँ के डेस्क और बेंचेस थे वो भी वॉर्न आउट हो चुके थे, यानी वो भी पुराने हो चुके थे। जो वॉलनट का पेड़ उनके गार्डन में था वो थोड़ा और लंबा हो चुका था और जो होप वाइन उन्होंने खुद ही प्लांट करा था वो भी जो है अब वो रूफ से निकल करके वॉल्स और विंडोज पे जाने लगा था। फ्रांस जो है वो अपनी टीचर की जो उस वक्त की दुविधा थी और उनका जो दुख था वो बिल्कुल समझ सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपने 40 साल उस लैंग्वेज को डेडिकेट किए थे, उन्होंने पढ़ाने में डेडिकेट किया था, और वहीं जब ऊपर उनकी बहन जो है वो सारे उनके सामान पैक कर रही थी, अपने ट्रंक्स में डाल रही थी और वो सारी आवाजें उन तक पहुंच रही थी, क्योंकि अब उन्हें अगले ही दिन वो कंट्री छोड़ के जाना था, वो ऑर्डर्स थे वैसे, और उनके दिल में क्या चल रहा होगा, किस इमोशन से वो गुजर रहे होंगे, वो तो सिर्फ वो एम हैमिल ही जान सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और हर किसी की बात सुनी, हर किसी का लेसन उन्होंने सुना जो कि उन्हें बोलना था। जब राइटिंग की क्लास खत्म हुई तो नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री की क्लास हुई, और हिस्ट्री के क्लास के बाद फोनेटिक्स हुआ। अब फोनेटिक्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज का वो पार्ट होता है जहाँ पे आप लैंग्वेज में या उस वर्ड्स को किस तरह से आप प्रोनाउंस करोगे, उसका टोन क्या होगा, वो सिखाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो फोनेटिक्स है, और इसी वजह से वहाँ पे लिखा है कि जो बेबीज हैं वो बाबे बी बो बू अपना चैंट कर रहे थे। यानी सारे लोग बेबीज तो थे नहीं वहाँ पे, लेकिन बस फ्रांस का ये कहने का मतलब है कि वो लोग बिल्कुल बच्चों की तरह अपने लेसन पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, और जैसे कि वो लोग फर्स्ट टाइम फोनेटिक्स पढ़ रहे थे। और इस वजह से, क्योंकि वो साउंड के बारे में होता है और सब लोग आवाजें निकालते हैं जिस तरह से बिल्कुल बच्चे निकालते हैं वैसे। फिर जो है जो हॉजर था वो, उसने भी अपनी नोटबुक उठाई, अपने दोनों हाथ उसने पकड़ी हुई थी, और जिस जिस तरह से वो लेसन लिखा था वो भी सारे बच्चों के साथ वो उस लेसन को कंटिन्यू कर रहा था। वो भी रो रहा था और इस वजह से उसकी आवाज जो है वो काफी हिल रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। और तभी फ्रांस को एक मिक्स्ड इमोशन फील होता है, यानी उसको वो आवाज सुन करके जो है वो हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ रोना भी आ रहा था, है ना। वो किस तरह का बिल्कुल वो समा था, और इस वजह से वो काफी मिक्स्ड फील कर रहा था। और तभी जो चर्च की घड़ी होती है वहां से उन्हें संकेत मिलता है कि 12 बज चुके हैं, इसका मतलब कि जो स्कूल टाइमिंग है वो खत्म हो गई है। और तभी उन्हें जो प्रुशियन सोल्जर्स हैं उनके ट्रम्पेट्स के साथ उनके ड्रिल से वापस आने का आवाजें सुनाई देती हैं, और तभी एम हैमिल जो है वो खड़े होते हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, और वो जैसे ही कहना शुरू करते हैं वैसे ही उनकी आवाज जो है वो फंस जाती है, क्योंकि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनसे कुछ कहा नहीं जाता है। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं और एक चौक उठा करके वो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा, विवला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, हमेशा फ्रांस अमर रहे, है ना। ये होता है, उसके बाद फिर वो बिल्कुल दीवार से जाकर के सट जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, एक वर्ड भी नहीं बोलते, बस हाँ अपने हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका है, तुम सब लोग जा सकते हो। और यहीं पे हमारा लेसन हो जाता है खत्म। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है, स्पेशली अगर वो आपकी मदर टंग हो, हम लोग हमेशा, इनफैक्ट हिंदी को भी हमारे यहाँ पे एक डिग्रेडेड भाषा समझा जाता है ना, कि उसे जो जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं या फिर जो हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं उन्हें हम लोग अप्रिशिएट करने के जगह पे उन्हें नीचा दिखाते हैं या उन्हें कहते हैं कि तुम मॉडर्न नहीं हो। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि अगर हम लोगों को इस बात से रोक दिया जाए कि तुम ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो, हिंदी नहीं बोल सकते हो, तब सबसे ज़्यादा हम लोग इसी लैंग्वेज को मिस करने वाले हैं, जिस तरह से फ्रांस और एम हैमिल और बाकी जितने भी लोग थे अलसास और लोरेन के, वो से मिस करते। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग को एक मैप भी मिलता है जहाँ पे हमें एक आइडिया होता है कि जो अलसास और लोरेन का जो एरिया था वो जर्मनी से काफी सटा हुआ था, और इसी वजह से जर्मनी ने फ्रांस के उस हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था और वहां पे अपना ही राजपाट चलाना चाह रहे थे। और तब क्या हुआ वो हिस्ट्री तो हमारे पास है ही। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड इसकी जो एक्सरसाइजेज है, एंड देन हम लोग इसके साथ ही एक पोएम भी करेंगे, दैट इज माई मदर एट 66। ये सारी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, कुछ लैंग्वेज और वर्ड्स की बातें करेंगे, एंड अपनी पोएम भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। टिल देन आई विल टेल यू कि ये जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, आप उसे याद रखें, जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करें, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें, एंड मैं आपकी एक्सरसाइज आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।